ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया। दुर्ग और धमतरी जिले के कलेक्टर बदले गए। केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कोंडागांव में अधिकारियों की बैठक लेकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्टीम इंस्पेक्टर और सिविल जज परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग निवारण के लिए 3,880 करोड़ रुपए की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण इस कार्यक्रम का प्रमुख क्षेत्र होगा और इससे किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पशु औषधि के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य विधानसभा में आज बजट पर सामान्य चर्चा जारी रही। इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 20 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने अपने विचार रखे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पर हुई सामान्य चर्चा पर अपना जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को सरकार के रचनात्मक प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार सुशासन के आधार पर प्रदेश का विकास कर रही है। इससे पहले आज विधानसभा में जशपुर और बिलासपुर जिले में सर्पदंश से होने वाली मौतों में मुआवजे के नाम पर घोटाले का मामला गूंजा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जशपुर में 96 और बिलासपुर में 431 लोगों की सर्पदंश से मौत हुई है, जिनके परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे में करोड़ों रूपये का फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रूपये का घोटाला हुआ है। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री ने सदन में बिलासपुर में सर्पदंश से हुई मौतों की जांच कराने की घोषणा भी की। सदन में आज ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सिकल सेल संस्थान में मरीजों के लिए इलाज की सुविधा नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिकल सेल बीमारी से 25 लाख लोग पीड़ित हैं और इसके लिए सिर्फ एक ही चिकित्सा संस्थान रायपुर में है, लेकिन वहां भी पर्याप्त विशेषज्ञ नहीं है। मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में सिकल सेल प्रबंधन सेल शुरू किया गया है। चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सिकल सेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। राज्य सरकार ने 2 जिलों के कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। जारी आदेश के मुताबिक अभिजीत सिंह को दुर्ग जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं अविनाश मिश्रा को धमतरी जिले के कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा रेना जमील को लोक सेवा आयोग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विश्वदीप को रायपुर नगर निगम के आयुक्त के साथ ही स्मार्ट सिटी के प्रबंध संचालक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कुमार विश्वरंजन को रायपुर जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय की आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की। ये पहल मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का एक हिस्सा है। सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत की स्थापना करना है। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कोंडागांव में अधिकारियों की बैठक लेकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला और बाल विकास, कौशल विकास सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोंडागांव में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत सभी निर्धारित इंडिकेटर्स पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को जिले में लागू कर सभी जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही लो वोल्टेज की समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को भी कहा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने स्टीम इंस्पेक्टर, वाष्प यंत्र निरीक्षक और सिविल जज परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। स्टीम इंस्पेक्टर की परीक्षा 4 मई और सिविल जज की परीक्षा 28 मई को आयोजित की जाएगी। पीएससी के अनुसार वाष्प यंत्र निरीक्षक परीक्षा केवल रायपुर में आयोजित की जाएगी, वहीं सिविल जज परीक्षा के लिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई में परीक्षा केन्द्र बनाए जाएंगे। दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले पीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र अग्रवाल की खंडपीठ ने गारे कोल ब्लॉक भू अधिग्रहण से प्रभावित 49 किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रायगढ़ कलेक्टर, घरघोड़ा एसडीओ और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में किसानों ने नया भूमि अधिग्रहण कानून आ जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 247 के तहत किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 1-4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसके तहत ड्रोन पायलट और फिल्म निर्माताओं को हवाई सिनेमेटोग्राफी के माध्यम से देश के विविध परिदृश्य, विरासत और जीवंत जीवन को पक्षी की नजर से दिखाने वाला 2-3 मिनट का वीडियो बनाने का काम सौंपा गया है, जिसका शीर्षक वेव्स इंडिया अ बर्ड्स आई व्यू चैलेंज, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज रखा गया है। वर्तमान में ये चुनौती केवल नमो ड्रोन श्रेणी के प्रतिभागियों के लिए खुली है और वीडियो जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला मड़ई का कल महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शुभारंभ किया। इस दौरान श्रीमती राजवाड़े ने पद्मश्री जागेश्वर यादव का सम्मान किया। मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। इस मड़ई की थीम सशक्त महिला, समृद्ध महिला है। महिला मड़ई में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक किया जा सकता है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के गिरौदपुरी में कल से 3 दिवसीय गिरौदपुरी मेला शुरू हो गया है। मेले के पहले दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु गद्दी के दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली तथा समृद्धि की कामना की। इस दौरान मेला समिति की मांग पर श्री साय ने गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने और मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की। ये मेला 6 मार्च तक चलेगा। कोंडागांव जिले में कल से वार्षिक मेले की शुरुआत हो गई है। 6 दिवसीय मेला 9 मार्च तक चलेगा। लगभग 700 वर्ष पुराने इस मेले में कोंडागांव सहित बस्तर और नारायणपुर जिले के ग्रामीण शामिल होते हैं। मेले के शुभारंभ अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, कोंडागांव विधायक लता ओसेंडी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने माता गुड़ी स्थल में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। मेला स्थल पर ग्राम पलारी की माता डोली और लाट देव विग्रह ने परिक्रमा की, जिसके बाद अन्य गांवों के देवी देवताओं ने अनुसरण किया। पारंपरिक छत्र, डंगई लाट और देव विग्रहों के साथ ढोल, नगाड़ों, मोहरी और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि ने मेला क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। और अब पेश है मौसम का हाल। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है, जिसके कारण प्रदेशवासियों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।
पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के कारण प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जांजगीर चांपा जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। अध्यक्ष पद पर सत्यलता आनंद प्रकाश मिरी और उपाध्यक्ष पद पर गगन जयपुरिया की जीत हुई है। कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत परसवारा में महिला पंचों के पतियों को पंच पद की शपथ दिलाने के मामले में जिला पंचायत सीईओ अजय कुमार त्रिपाठी ने परसवारा के सचिव प्रणवीर सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया है। सरगुजा जिले के गुमगरा खुर्द बर्तीपारा प्राथमिक स्कूल के शिक्षक शैलेन्द्र सिंह पोर्ते को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि यह शिक्षक शराब के नशे में स्कूल आकर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता था। जांजगीर चांपा के प्रभारी सिविल सर्जन दीपक जायसवाल के विरुद्ध स्टाफ से दुर्व्यवहार करने के मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय दल गठित किया गया है। इस जांच दल के अध्यक्ष अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह होंगे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र राजनांदगांव में कल 6 मार्च को सुबह 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा और कोरबा जिले के भैंसमा बाजार चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार एक नाबालिग युवक को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया। दुर्ग और धमतरी जिले के कलेक्टर बदले गए। केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कोंडागांव में अधिकारियों की बैठक लेकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्टीम इंस्पेक्टर और सिविल जज परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।